हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राधिका की बात सीधे सीधे रोहान को भड़काने के लिए थी, पर रोहान अनाही के मामले में उनसे भड़क नहीं पा रहा था। रोहान ने जल्दी से राधिका का जवाब देते हुए कहा, नहीं काकी, उन्होंने नहीं कहा था कि मैं उनको ऑफिस छोड़कर आऊं। वो तो मुझे ही लगा कि निमानी परिवार की बहू सड़क पर चलते हुए अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं खुद ही छोड़ने गया था। वैसे भी अभी मॉर्निंग में मुझे कोई काम नहीं था और आज मेरे दोस्तों का भी कोई प्लान नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं दोपहर तक घर पर ही रहूं, इसलिए गया था। शायद ही रुहान ने आज से पहले अपने किए किसी काम के लिए इतनी लंबी चौड़ी सफाई दी होगी। माधवी और राधिका दोनों की आंखों में हैरानी आ चुकी थी, तो वहीं किचन से बाहर आई निवेदिता की आंखों में नमी आ चुकी थी। उसका बेटा पहली बार सही बात कर रहा था और राधिका के खिलाफ बोल रहा था, जो वो आम तौर पर नहीं करता है। निवेदिता ने भी रुहान का साथ देते हुए उनके बीच में आकर कहा, रुहान, तुम सही बोल रहे हो। अगर हमारे पास मौका है हमारे किसी अपने की मदद करने का, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी तुम लोगों का नया नया रिश्ता है, ये अच्छी शुरुआत तुम्हारे रिश्ते की नींव को और भी अच्छा और मज़बूत बनाएगी। रुहान, जो माधवी और राधिका से कुछ और बोलने वाला था, उसका मुंह जैसे सिल चुका था। निवेदिता की मौजूदगी से उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने माधवी की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराकर कहा, ताई जी, मैं ब्रेकफ़ास्ट रूम में करूँगा, आप भिजवा देना। इतना बोलकर वो निवेदिता को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चला गया। उसके ऐसा करने से निवेदिता की आंखों में आई नमी उसके गालों पर आ गई थी, जिसे उसने जल्दी से पोंछते हुए मुस्कुराकर माधवी की तरफ देखकर कहा, आज भी आपसे बहुत प्यार करता है वो, देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ज़्यादा चिंता मत करो उसकी, तुम बस अपने बड़े बेटे का ख्याल रखो। रुहान का ख्याल रखने के लिए उसकी ताई अभी जिंदा है, तुम्हारे कंधों पर उसका बोझ मैं कभी नहीं आने दूंगी। निवेदिता अपने उदास मन के साथ अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी, तो वहीं माधवी ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, और तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक मेरा काम ना निकल जाए। इतना बोलकर वो गुनगुनाते हुए किचन की तरफ चली गई, ताकि रुहान के लिए ब्रेकफास्ट ले जा सके। वहीं कमरे में जाते ही रुहान बैठकर दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए बोला, मैं ताई जी और काकी के लिए ऐसे शब्द कभी नहीं बोलता हूँ, आज मैं उनका साथ क्यों नहीं दे रहा था। मैडम जी, आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आज आना, मैं बताता हूँ आपको आप कैसे मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती हैं। रुहान अकेले में ही बात कर रहा था, तो वहीं शुकर, जो उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके आते ही म्याऊं म्याऊं करते हुए इसकी गोद में दौड़ पड़ी और उसे देखकर रुहान का उखड़ा हुआ मूड तुरंत ही ठीक हो गया। दोपहर के वक्त वेदांत अपने कमरे में रेडी हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जाकर अपनी पिद्दी सी बीवी को ढूंढ रही थी, क्योंकि वह सच में पूरे दिन से कमरे के अंदर नहीं आई थी। वेदांत को पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी नामौजूदगी हद से ज्यादा खल रही थी। उसने फिर अपनी टाई को ठीक करते हुए झुंझलाकर कहा, पता नहीं तुम इतनी आज्ञाकारी कब से हो गई हो, क्योंकि जो काम तुम्हें सच में नहीं करना चाहिए उसको बिगाड़ने के लिए तुम नंबर वन रहती हो, और यहाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है तो तुम सच में पूरे दिन कमरे के अंदर नहीं आई हो। वेदांत अपनी वॉच में टाइम देखा हुआ कमरे से बाहर निकला, तो उसकी मुलाकात रास्ते में निवेदिता से हो गई, जो अपने हाथों में कुछ स्नैक्स लिए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उनके हाथों में स्नैक्स देखकर वेदांत की आंखें छोटी हो गईं। उसने कन्फ्यूजन से पूछा, मॉम, आप कब से ये चिप्स और कुरकुरे खाने लगी हैं, वो भी इस टाइम? निवेदिता दी जल्दी से खुश होते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं है, ये तो मेरी छोटी बहुरानी के लिए है। हम दोनों आज एक साथ मूवी देख रहे हैं। कई दिनों बाद मेरे साथ कोई मूवी देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है, तो बस उसी के लिए लेकर जा रही हूँ। वेदांत ने कई सालों बाद अपनी माँ के चेहरे पर चमक देखी थी। उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। शायद पहली बार नमन के जाने के बाद उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई थी। वेदांत ने अपने मन में कहा, टोमैटो, कुछ तो अच्छा काम भी करती हो तुम। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आते वक्त अनाही को भी साथ ही ले आऊँगा, और मॉर्निंग के लिए सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं अनाही के लिए ड्राइवर को भेज दूँ, और मुझे पता है अनाही कितनी खुददार लड़की है, खुद से तो वो ड्राइवर के साथ गई नहीं होगी, उसे जाकर मैं सॉरी भी बोल दूंगा। सुबह मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब था, इस वजह से मैंने उससे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं की। अनाही का जिक्र सुनकर निवेदिता के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमने सुबह उसको ड्राइवर के साथ जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उसके बाद रुहान खुद उसे ऑफिस छोड़कर आया था। वेदांत ने शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, रियली, रुहान निमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के सामने गया था, मैं अपने दिमाग में ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। वेदांत को आज भी याद है कैसे जब रुहान सेकंड ईयर में था, उसने रुहान के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा था कि भाई क्लब जाना छोड़ दे, उसके साथ ऑफिस ज्वाइन कर ले अगर उसको स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन रुहान ने सिरे से नकार दिया था निमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करने के लिए। उसने कहा था उसको किसी और के टुकड़ों पर पलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो कंपनी वेदांत ने खड़ी की थी और पता नहीं क्यों रुहान को हमेशा ही वेदांत अपना दुश्मन ही नजर आता है। निवेदिता ने अपने आंखों के कोने पहुंचते हुए कहा, और तो और उसने राधिका से बहसबाजी भी की अनाही के लिए कि वो कभी गलत नहीं होती है। मैं तो ये सोच सोचकर ही खुश हो रही हूँ कि मेरा बेटा पहले ही दिन अपनी पत्नी के लिए खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, देर सवेर अगर उसकी आँख खुल भी जाए तो ये भी बेहतर ही है। आप जाइए अपनी मूवी एंजॉय कीजिए, मैं भी निकलता हूँ ऑफिस के लिए, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है मुझे। वेदांत जैसे ही ऑफिस पहुंचा, उसकी नज़र सबसे पहले अनाही पर ही गई थी, जो उसके केबिन के ठीक सामने बने केबिन में अपना काम कर रही थी। वेदांत ने अपने कदम उसके केबिन की तरफ बढ़ा दिए। वेदांत के आने के साथ ही अनाही अपनी चेयर से उठते हुए बोली, गुड आफ्टरनून सर, मैंने जूली को बोल दिया था कि आपका शेड्यूल आफ्टरनून के हिसाब से सेट कर दे, आप उससे शेड्यूल ले सकते हैं। बाकी मीटिंग शाम को 4 बजे है तो अभी उसमें टाइम है, आप उसके लिए पहले से कुछ रेफरेंस पॉइंट अगर लिखवाना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। इतना बोलकर उसने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन वेदांत की तरफ कर दी। वेदांत ने एक नज़र कंप्यूटर स्क्रीन को देखा और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुमसे आज एज अ बॉस बात करने नहीं आया हूँ। उसकी ये अजीबोगरीब बात सुनकर अनाही की आंखों में कन्फ्यूजन आ गया और उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, जी सर, मैं आपकी बात समझी नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। कंपनी में तो आप मेरे बॉस ही हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक बॉस के लहजे से ही मुझसे मिलने आना चाहिए था। वेदांत ने एक लंबी सांस छोड़कर अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए कहा, वो एक्चुअली मैंने सुना रुहान तुम्हें यहाँ ड्रॉप करने आया था। सुबह का इंसिडेंट याद करके अनाही की स्माइल भी गहरी हो गई और उसने हंसते हुए कहा, हाँ, मेरे लाख मना करने के बावजूद वो सुबह मुझे छोड़ने आए थे यहाँ। वेदांत ने जल्दी से कहा,
थैंक यू सो मच। आज से पहले मेरा भाई मेरी कंपनी के सामने से गुजरा तक नहीं है। उसे इतनी ज्यादा नफरत है इस कंपनी से, क्योंकि इसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है।